में, लेकिन उनको लिखते हुए उसका विशेष उद्देश्य यह है कि जो लोग प्रभु में आए हैं, उसकी कलीसिया है, किस प्रकार से उस कलीसिया को उन झूठे शिक्षकों से बच के रहना है, सावधान रहना है और मसीह में अपने विश्वास में बढ़कर घटकर पवित्रता में आगे बढ़ना है। और कलीसिया परमेश्वर के ओर से कहना चाहिए उसकी एक पूर्णकालीन योजना में है। अभी हम उसको देखेंगे। अभी जो स्थल हमने पढ़ा इफिसियों का दूसरा अध्याय उसके 11 पद से लेकर 22 पद तक, इफिसियों की पत्र एक ऐसी पत्र है जो बहुत ही सुंदर रीति से चर्च कलीसिया के बारे में बात करती है। और अगर उसका थीम देखा जाए, उसका विषय देखा जाए, तो यह है कि ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट इन द चर्च, कलीसिया में परमेश्वर की महिमा। अगर इफिसियों की पत्रिका का अध्ययन करें और पिछले दिनों में यहां क्या गया है, और आज सुबह थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ कलीसिया विषय पर लाना चाहता हूं। और जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, खास से नए नियम का अध्ययन करते हुए, तो हम देखते हैं कि करीब 9 अलग अलग चिन्हों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें कलीसिया का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि उन चिन्हों के द्वारा हम कलीसिया की विशेषताओं को जान सकें और उनको जानते हुए हम अपने जीवन को उसी रीति से आगे बढ़ा सकें। इफिसियों की पत्री में, केवल इफिसियों की पत्री में कम से कम 6 ऐसे चित्रण हैं, जिसमें शायद आज हम 5 को हम देखेंगे, जो कलीसिया के बारे में है। लेकिन कलीसिया क्या है? जब हम बाहर आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, लोग देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं भाई, आप कहां जा रहे हैं? हम चर्च जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सियोन चर्च जा रहे हैं। तो क्या अंकित कर रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि वहां पर एक स्थान है, वहां पर हम जा रहे हैं। तो अक्सर लोग चर्च को इस रीति देखते, कोई स्थान है, जरूर स्थान एक है, लेकिन स्थान से बढ़कर कुछ और है। लेकिन बाइबल के अनुसार कलीसिया की परिभाषा क्या है, बाइबल के अनुसार कलीसिया की परिभाषा क्या है, हम देखना चाहेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कलीसिया की परिभाषा, कलीसिया परमेश्वर का स्वप्न, दर्शन एवं एक एवं पूर्वकालीन योजना। परमेश्वर का स्वप्न, दर्शन एवं पूर्वकालीन योजना के है एक ऐसा समुदाय या लोगों का समूह जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करते हुए स्वयं के पापों से पश्चाताप करके मन फिराया, पापों की क्षमा को प्राप्त किया, और वो लोग उसके पवित्र लहू से छुड़ाए गए जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया तथा विश्वासियों के समूह में सम्मिलित हो गए, और सम्मिलित होने के बाद निरंतर परमेश्वर के वचन नियमों के अनुसार, जिसमें रोटी तोड़ना, संगति करना, शिक्षा पाना एवं प्रार्थना करना सम्मिलित है, पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ता जाता है। यह है केवल लोगों का समूह नहीं, लेकिन लोगों का समूह है जिन्होंने कदम उठाया है। यह पहली बात, परमेश्वर का स्वप्न, दर्शन और पूर्वकालीन योजना, इससे पहले सृष्टि की रचना हो जाए। परमेश्वर के वचन में अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हम चले जाएं, है ना, ठीक है, हम आदम की बाटी में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाप आया। लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो एक अभिलाषा थी परमेश्वर की, और अभिलाषा ये थी कि वो मनुष्य के बीच में वास करे, मनुष्य के साथ संगति करे, मनुष्य के साथ रहे। ये उसकी अभिलाषा आरंभ से रही, और इस अभिलाषा को लेकर उसने मनुष्य की सृष्टि की। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, अगर समय के अनुसार हम अध्ययन करते जाएं, तो आरंभ से एक और शत्रु शैतान का आक्रमण है, वो इसको ध्वस्त करना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर उसका निर्माण करता और करता चला जा रहा है, और परमेश्वर ने अपनी उस पूर्वकालीन योजना को पूरा किया है। सो पूर्वकालीन योजना, इससे पहले संसार किसके परमेश्वर के मन में कलीसिया थी, और ये इसको समझना है। तो केवल समूह नहीं, लेकिन वो समूह जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो यीशु के रुधिर से धोए गए, शुद्ध किए गए हैं, अब उन्होंने एक समर्पण लिया है बपतिस्मा लेके, एक समूह में मिलकर के वे उन क्रियाओं को करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। केवल यानी मैंने विश्वास कर लिया, ये नहीं, लेकिन विश्वास किया था, लेकिन मेरे जीवन में प्रतिदिन एक कार है जिसको मैं करते हुए आगे बढ़ता चला जाता हूं। सो ये कलीसिया की परिभाषा मैंने अपने शब्दों में लिखी है और इसको मैं समझना है। ये जरूर क्यों कलीसिया परमेश्वर का दर्शन है, ये आश्चर्य लगता है जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं। जब जो कुछ हो रहा था उसने दर्शन किस प्रकार से पूरा कर रहा है, यद्यपि मनुष्य पाप में गिर रहा है लेकिन उसी दर्शन में होकर उसने एक बहुत बहुत सारे वचन है, लेकिन एक पद मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, यर्मिया, यर्मिया उसका 31 अध्याय, यर्मिया उसका 31 अध्याय और 31 पद से, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की वाणी है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने में एक नई वाचा बांधूंगा, उस वाचा के समान नहीं जिसे मैंने उनके पूर्वजों से उस दिन बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया था। मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखिए, पुराना नियम नया नियम जुड़ा हुआ है, पुराना नियम नया नियम जुड़ा है, और जब भी आप नए नियम को समझना चाहते हैं आपको पुराने नियम में जाना होगा, और पुराने नियम को समझना चाहते हैं आपको नए नियम में आना पड़ेगा, और यह जरूरी है। और जब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, मैंने हाथ पकड़कर तुमको निकाला था, इसराइलियों को निकाला था, यह सच है। वो प्रक्रिया परमेश्वर ने एक बार की, लेकिन वो पूरी नहीं उस व्यवस्था के कारण, लेकिन उस प्रक्रिया को हम प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते देखते हैं, जिस पर हम थोड़ी देर में आगे जाएंगे। तो यहां कह रहा है मैंने हाथ पकड़ के निकाला, मिस्र से बाहर निकाला। पिछले दिनों में जब हम यहूदा की पत्री को हम अध्ययन कर रहे थे, हमने देखा था कि मिस्र क्या है, मिस्र किसको प्रकट करता है, मिस्र संसार को प्रकट करता है, मिस्र बंधुआई को प्रकट करता है, मिस्र गुलामी को प्रकट करता है। हमने इस बात को बहुत ही विस्तार से देखा था, और उसने उस देश से उनको बाहर निकाला। यद्यपि मैं उनका पति समान था, फिर भी उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ा था, यहोवा की वाणी है। अब यहां परमेश्वर अपने आप को पति समान बताता है, लेकिन नया नियम क्या कहता है इसको भी हम आगे चल के देखेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है, यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में लिखूंगा। पहले पटरी पर लिखी गई थी, पत्थर पर लिखी गई थी, अब परमेश्वर अपनी वाचा को मनों में लिख रहा है। उनके हृदय पे लिखूंगा, मनों में डालूंगा, उनके हृदय में लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूं ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्होंने अपने पड़ोसी को अपने 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 तब उन्हें अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को फिर ये सिखाना पड़ेगा, यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, यहोवा की वाणी है। यह कलीसिया की आशीष है। जब मैं कलीसिया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, तो कलीसिया शब्द एकदम से वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के रुधिर से धोए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, वो विश्वासी जो उसके अनुयायी हैं, वे लोग स्थान नहीं, बिल्डिंग नहीं, लेकिन लोग हैं। और वो कह रहा है, यहां कह रहा है, मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। और ये वाचा हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होकर पूरी हुई है, प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। सो ये प्रतिज्ञा थी, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन स्वप्न है कलीसिया, और उसका वो निर्माण आरंभ से कर रहा है। जैसे एक नेव डाली जाती है, और नेव डाल करके एक रद्दे पे रद्दा रखा जाता है, और एक बिल्डिंग का ये भवन का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आराम से नेव डालकर एक एक करके ईंटे रख रख करके उस कार्य को पूरा करने में लगा पड़ा है, और उसने पूरा किया। अब आइए मेरे साथ इफिसियों की पत्री में हम आएंगे। अब इफिसियों की पत्री में मैंने कहा जो स्थल हमने पढ़ा था, वो कह रहा है 11 पद से लेकर 13 पद तक, क्या कह रहा है, वो दो बार कहता है स्मरण करो, स्मरण करो। पहले कह रहा है 11 पद में, इस कारण स्मरण करो, दूसरा अध्याय 11 पद, फिर दूसरा अध्याय उसका 12 पद में स्मरण करो। क्या बात स्मरण दिलाना चाह रहा है, वो मुझे और आपको स्मरण दिलाना चाह रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने उस दिन को स्मरण कर सके जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर आप पर दया की और मुझे और आपको छुड़ाया था, पापों से छुड़ाया था। अपने उस दिन को स्मरण करो क्या था तुम्हारे साथ? वो कह रहा है कि तुम मसीह से अलग थे और कह रहा है इस प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, उसकी प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, क्योंकि पाप के कारण, उस अधर्म के कारण, उस अधार्मिकता के कारण, हमें स्वभाव, हमारे चरित्र के कारण हम इस लायक नहीं थे कि हम उसकी प्रजा कहला सके। परंतु कह रहा है उससे तुम वंचित थे, प्रतिज्ञा की वाचों के भागीदार नहीं थे, वो प्रतिज्ञा जो उसने कही थी, क्योंकि हम पाप पे जन्मे, पाप पे बढ़ रहे थे, पाप हमारा खाना था, पाप हमारा पीना था, पाप हमारा स्वभाव था, पाप पे हम बढ़ रहे थे, और पाप के कारण वो परिणाम ये था कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। और मेरे प्रियो, हम एक दिन उसी संसार के उन लोगों के समान थे कि परमेश्वर से अलग थे और पाप में जीवन व्यतीत करते, और इसलिए कह रहा है कि वह मसीह से अलग थे, उसकी प्रजा कहलाने से वंचित थे, उसकी प्रतिज्ञाओं के भागीदार नहीं थे, आशाहीन थे, कोई भी आशा नहीं थी मरने के बाद क्या होगा। हमारे पास ये प्रश्न का उत्तर नहीं था, क्या मरने के बाद भी जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में, वचन में, केवल वचन और बाइबल में इस बात का उत्तर है, हां इस मृत्यु के बाद भी जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह में जीवन। हमें कुछ नहीं मालूम था, आशा नहीं थी हमारे पास, कोई आशा नहीं थी, और वो कह रहा है तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। संभवतः हम ये तो सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, संभवतः हम ये तो सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के को खोज रहे हैं, संभवतः हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, शायद अपने धर्म के कर्मों के कारण, शायद अपने कुछ भले कार्यों के कारण या रीति विधियों पालन कारण के कारण, लेकिन वचन कहता ऐसा गलत था, तुम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। मेरे प्रियो, और आज संसार में कितने लोग परमेश्वर परमेश्वर करते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते, और यही दशा, यही स्थिति मेरे और आपकी थी। और मेरे प्रियो, यहां पर कह रहा है परंतु, तब पौलुस लिख रहा है, ये कंडीशन थी तुम्हारी पुरानी, ये स्थिति थी, परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, ना केवल इतना था लेकिन मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसके समीप आ गए। वो लहू के द्वारा धोए गए, उस लहू ने, जो लहू तुम्हारे लिए क्रूस पर बहाया गया, कीमती लहू बहाया गया। और मेरे प्रियो, पापों की छुटकारा बिना यीशु मसीह के लहू बहाए हो नहीं सकती। और जब कलीसिया की बात हम करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कलीसिया वो समूह है जिन्होंने यीशु के लहू के द्वारा, जो लहू के द्वारा धोए गए हैं, छुटकारा पाया है। यदि आपका अभी तक यह अनुभव नहीं है, शायद आपने मसीह परिवार में जन्म लिया हो, शायद आप मसीह रीति विधियों को पालन करते हो, शायद आप चर्च भी जाते हो, शायद बहुत कुछ और भी करते हो, लेकिन अगर इस प्रकाशन में आप नहीं आए हैं तो आप अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। और इसलिए आज ही अवसर है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आज तुम जब परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने कानों को कठोर मत करो। आज ही उद्धार का समय है, और इसलिए आज ही आपके लिए अवसर है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसको स्वीकार करें कि प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मैं तो अपनी झूठी धार्मिकता में जीवन कर रहा हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं यीशु के लहू के लिए जो मेरे लिए क्रूस पर पाया गया, मैं उस पर विश्वास करता हूं और उसके लहू का छिड़काव अपने पर लेता हूं, अपने जीवन को संपूर्ण रीति से यीशु आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, ये कदम है उसकी कलीसिया के सदस्य बनने का, जो विश्वव्यापी कलीसिया है। उस कलीसिया को अपनी देह का है, क्या मतलब है, क्यों वो कह रहा है कलीसिया उसकी देह है। परमेश्वर के वचन में जब हम पहले कृत्य पढ़ते हैं और इसमें पढ़ते हैं तो बहुत अधिक स्पष्ट रूप से समझाया गया है, एक देह का सिर होता है और उसके साथ साथ शरीर के और अंग होते हैं, और सिर उसका संचालन करता है, और मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह कलीसिया का सिर प्रभुता करने वाला है, वो अधिकारी है, वो संचालित करने वाला है। और इसलिए अगर देह है तो देह में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं और चलते हुए आपके दाहिने पांव में छोटी कन की उंगली जो किनारे है, अगर उसको ठोकर लग जाती पत्थर से तो क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है? पूरी देह कंपित हो जाती है, आपका हाथ फट से उसके उस पर जाता है, आप उसको दबाते हैं, उसको सहलाते हैं, उसको संभालते हैं। कन की उंगली है, किनारे की उंगली है, छोटी सी उंगली है, लेकिन उस उंगली की भी महत्ता है। और जब हम कलीसिया की बात करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों में पौलुस बात को लिखते हुए कहता है, आगे करके वो बात आता है, यहूदी अन्य जाति कहता है पहले इसी लिपि पे 11 पद में कि अन्य जाति शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर के हाथ में किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, अर्थात चाहे यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे कैसे हो, कोई किसी जाति से, किसी देश से, किसी भाषा से, किसी रंग रूप से मतलब नहीं, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य है, उसकी परमेश्वर ने सृष्टि की है, और मनुष्य मनुष्य पाप में गिरा है, और चाहे वो किसी भी स्थान का हो, और इसलिए उसको उस स्थिति से निकल करके मसीह में आने की आवश्यकता है। और जब तक कोई भी व्यक्ति चाहे किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, किसी रूप का हो, किसी रंग का हो, किसी जाति का हो, जब तक उसमें से निकलकर मसीह में नहीं आता, वो मसीह की देह नहीं बनता। और इसलिए परमेश्वर ने अपने उस महान योजना में, उस स्वप्न में जो आरंभ से उसके स्वप्न था, दर्शन था, उसको पूरा करने के लिए इस कलीसिया को रूप दिया और कलीसिया का निर्माण किया, और वो कलीसिया उसकी देह है जिसमें अलग अलग अंग हैं, भिन्न भिन्न अंग हैं, अलग अलग वरदान हैं, अलग अलग तरीके हैं, और परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैंने कहा फिसी की पत्रिका जो शीर्षक है, थीम, मुख्य थीम यह है कि मसीह की महिमा कलीसिया में वास करती है, मसीह की महिमा कलीसिया में वास करती है। तो पहली बात तो कहता है कि वो कलीसिया जो है उसकी देह है। दूसरी बात आगे जाके दूसरा अध्याय उसका 19 पद, दूसरा अध्याय उसका 19 पद, अतः तुम अब विदेशी और अजनबी ना रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। क्या कह रहा है वो, दो बातें यहां पर। पहला कह रहा है अब तुम परदेशी और अजनबी नहीं रहे। जब तक हम मसीह में नहीं थे, चाहे हम किसी भाषा में, किसी जाति में, किसी रूप में, किसी रंग में, किसी भी विधियों को पालन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, चाहे अपने शरीर को त्याग करते, चाहे कुछ करते, लेकिन वो कह रहा है कि तुम क्या थे उस समय तक, तुम अब उस समय तक तुम विदेशी थे, तुम अजनबी थे, तुम परमेश्वर के घर के लोग नहीं थे, तुम मसीह की देह में संभागी नहीं हुए थे, तुम मसीह की कलीसिया नहीं बने थे, तो परमेश्वर की कलीसिया नहीं बने। जो परमेश्वर की कलीसिया से बाहर है वो अजनबी है, वो परदेशी है, वो विदेशी है। परमेश्वर का वचन कहता है विदेशी है। यहां पर हम जब भारत अपने देश में देखते हैं और देखते हैं, जरूर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कई सारे नियम है, है ना। हमें आंटी को हमें एक बार मौका मिला, हम लोग पंजाब में थे और बिल्कुल बाघा बॉर्डर के किनारे खड़े होते, और बाघा बॉर्डर के किनारे खड़े होते तो वहां शाम को परेड होती है, आप लोगों ने टीवी में कई बार देखा हो। तो हमें भी किसी ने कहा कि परेड है, अच्छा है, आप देखने के लिए रुके, लेकिन खैर टाइम नहीं था। पर हम बॉर्डर तक तो गए, लेकिन आगे उस गेट तक तो गए, लेकिन उसके बाद आगे उन्होंने जाने नहीं दिया। हमारे पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट होने के बाद भी वीजा नहीं था, जब वीजा नहीं हम उस गेट को क्रॉस नहीं कर सकते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज में शामिल होने के लिए आपको वीजा की जरूरत है। और वीजा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप आपके जीवन में लगनी है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप आपके जीवन में लगनी है। अगर वो नहीं लगी है मेरे प्रियो, आपको अपने आप को नहीं मालूम कि वो छाप मेरे जीवन में लगी या नहीं लगी, आप दूर है, परदेशी है, अभी भी उसके राज से बाहर हैं। और वो यहां पर कह रहा है, फिर से मैं कह रहा हूं, अभी हम कुछ को देखेंगे जब मैं महिमा की बात करता हूं कि परमेश्वर की कलीसिया में उसकी महिमा वास करती है, प्रदर्शित होती है, तो क्या है वो, क्या कहता है वो संगीत स्वदेशी
ना केवल वो, तब कह रहा पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए। पहली बात कलीसिया उसकी देह है, दूसरी बात कलीसिया एक सहनागरिक है, नागरिकता में है। दूसरी बात उसके कुटुंब के लोग बन गए, 2:19 में उसके कुटुंब हाउस होल्ड ऑफ गॉड, ये उसके कुटुंब के। अब हमें परमेश्वर ने एक कुटुंब भी बना दिया है ना। अक्सर लोग खून के रिश्ते की बात करते हैं है ना, अरे मेरा खून का रिश्ता, उस पर गमन करते हैं है ना। अभी हम पिछले दिनों में किसी बोल रहा था, मैंने कहा भैया चाहे कुछ भी संसार में ऐसा है, खून का रिश्ता लोग लेके दौड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खून का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के खून का रिश्ता है। सबसे बड़ा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के खून का रिश्ता है। मेरे प्रियो, जितना अधिक आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू की धारा कार्य करती जाएगी, उसके वो लहू आपके अंदर प्रभावकारी होता चला जाएगा, आप उस कुटुंब को समझेंगे जो कुटुंब परमेश्वर ने अनंत के लिए तैयार किया है। परमेश्वर के वचन में देखेंगे कैसे ये कुटुंब वो कुटुंब है जो थोड़े समय के लिए नहीं, ठीक है, जब तक एक संबंधी यहां पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है, हमारा संबंधी है, एक दिन मट्टी है मट्टी मिल जाएंगे, याद रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज बदल जाती है। पर वो अनंत का जो कुटुंब है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से बनाया है, वो कुटुंब अनंत काल के लिए ठहराया गया है, उसकी श्रेष्ठता कहीं अधिक बढ़कर है, उसकी महत्ता कहीं और अधिक बढ़कर है। और इसलिए अगर हम उस कुटुंब के लोग हैं तो हमारा उस कुटुंब के प्रति क्या जिम्मेदारी है, कलीसिया की किस प्रकार से कलीसिया को चमकना है, किस प्रकार कलीसिया को प्रदर्शित होना है, कलीसिया के क्या कार्य है। केवल संडे को आकर आराधना कर लेना ही काफी नहीं है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने देखा जो रोटी तोड़ते, शिक्षा पाते, प्रार्थना करते, उसकी संगति में रहते, ये बहुत जरूरी है, निरंतर करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे के बारे में सोचना है, एक दूसरे की भी चिंता करनी है, एक दूसरे की भी सोचना है। कुटुंब किस प्रकार से, कोई फंक्शन होता है हमारा कुटुंब इकट्ठा जाता है, कोई दुख होता है हमारा कुटुंब इकट्ठा होता है, कोई और बात होती है हम कुटुंब के बारे में सोचते हैं। आज सुबह सुबह एक बहन का फोन आया कि अंकल मुझे रात में मेरे पास खबर आई कि मेरे घर से किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ ने फोन करा और मुझे रात में ही बनारस पहुंचना पड़ा, और जो कुटुंब के उनके जन का एक्सीडेंट हुआ, प्रार्थना की जो उनकी हालत बहुत खराब है, वो BHU में एडमिट है। ठीक है, रात में उसके उस बच्ची को खबर मिली बीच रात में, और वो रात में ही वहां भागी, बनारस गई। क्यों? 2 घंटे पहले वो हमारे साथ थी। क्यों? क्योंकि कुटुंब है। जरूर इस कुटुंब को जो पृथ्वी में है हम चिंता करते हैं, लेकिन ये कुटुंब जो कलीसिया कुटुंब है, जिसको परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से बनाया है, अपने उसे शुद्ध किया, खरीदा, मोल लिया है, उसके बारे में मुझे और आपको और अधिक सोचना है। अभी पिछले दिनों में एक संडे कोशिश करी गई थी परिवार में इनकरेज करने के लिए कि हम एक दूसरे को अपने घर में बुलाएं, और प्रयास किया गया था, अच्छा था। क्यों? ताकि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जाने, जय मसीह हो जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन और कुटुंब में बनना या बढ़ना और भी अच्छी बात है। तो ना केवल हम उसकी देह है जिसमें विभिन्न अंग हैं और हर एक अंग की कीमत है और हर एक अंग को अपनी भूमिका निभानी है, लेकिन हम अब परदेश नहीं रहे, अब हम इस देश के स्वदेशी बन गए, एक ही परिवार के हो गए, अब एक परिवार के एक कुटुंब के हो गए। ना केवल ये, लेकिन वो आगे चल के कहता है इसी में दूसरे अध्याय के 21 पद में, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर और प्रेरित तथा भविष्यताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं बनाए गए हो। यहां पर एक चित्रण भवन का है कि जो कलीसिया है वो भवन भी है। किस प्रकार से भवन है, ये भवन की बात नहीं कर रहा, वो एक उदाहरण दे रहा है, एक चित्रण दे रहा है कि जब कोई भवन बनाता है तो उसमें सबसे पहले नींव डाली जाती है, और उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव गड़बड़ हो गई तो बहुत मुश्किल होता है। 12 बंकी में जब हम थे, शायद मैंने कभी बताया होगा, और क्या हुआ, हम 12 बंकी चर्च को बनाने के लिए तैयार थे और हमने नींव डाली, लेकिन शायद हमारे मिस्त्री ने कुछ गड़बड़ करी,
और जब ने थोड़ा सा डाल करके थोड़ा आगे बढ़ गए थे तो हमने मट्टी भर दी, हमने कहा बरसात में मट्टी बैठ जाएगी और बैठने बाद तब हम इसका निर्माण, इसमें निर्माण का काम आरंभ करेंगे। तब उस समय परमेश्वर कई बार मुझे सबसे भी हमसे बात करता रहा और एक अजीब सा स्वप्न देखा, मैं बहुत घबराया। शाम के समय हमारा पड़ोसी भाई आया और पड़ोसी भाई कहने लगा, वो उसी रीत रास्ते से ड्यूटी पे ऐसे आता था, कहने अंकल अंकल आप अपने चर्च के प्लॉट में गए। मैंने क्या हो गया? कहा कि आपके चर्च की जो नींव है वो भाग रही है। और मैं बिल्कुल घबरा गया, हम उसके ऊपर निर्माण करने वाले थे। जब मैं तुरंत तो जब हम निर्माण कर रहे थे मैं भागा, मैंने देखा कि वो नींव जो मिस्त्री ने जिस चीज डालनी चाहिए थी उससे सही नहीं डाली और बांधा सही नहीं, और जब पानी पड़ा मट्टी पे तो वो एकदम से भाग गई। प्रभु का धन्यवाद हो कि दीवार खड़ी होने से पहले हमें पता चल गया। और तब फिर पूरी नींव उखाड़ा हम लोगों ने, और उखाड़ने बाद फिर नीचे से एक नए सिरे से पक्की नींव डाली जिस पर आज से उनका भवन बना हुआ है। चित्रण जो है तो होते हैं वो हमारे सोचने के लिए होते हैं, चित्रण जो होते हैं वो हमारे समझने के लिए होते हैं, और बाइबल बहुत सारे ऐसे चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि हम उस पर ठहर कर विचार करें क्यों परमेश्वर ने इन चीजों को इस्तेमाल किया है मुझे और आपको कुछ समझाने के लिए या सिखाने के लिए, क्यों करा है, इसका क्या अर्थ है। अब जब हम इस बात को सोचते हैं तब हम ध्यान देते हैं, अच्छा नींव ऐसी होती है, अच्छा इस नींव पर घर बनता है, अच्छा इस नींव पर जब घर बनता है तो ईंटों पर ईंटें रखी जाती हैं, अच्छा उस पर कुछ मसाला जोड़ा जाता है। ये सारी चीज जब हम सोचते हैं विचार करते हैं तो वो हमारी मदद करता है कि हम सोच सकें कि परमेश्वर मेरे और आपसे ये अपेक्षा कर रहा है, परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाह रहा है कि जिस प्रकार से एक भवन का निर्माण हो रहा है उस प्रकार से यदि मैं मसीह में हूं, यदि मैंने प्रभु को पाया है, यदि वो मेरा उद्धार करता है और मैं कलीसिया बना हूं तो मेरा भी निर्माण, मेरे जीवन में भी वही निर्माण होना है। मुझे अपना वो निर्माण करना है और अपने साथ साथ अपने साथियों का कलीसिया का निर्माण करना है। अर्थात उस नींव के बारे में सोचना है जो नींव प्रभु यीशु मसीह है। क्या मेरे और आपके जिम्मे यीशु मसीह फाउंडेशन है? हमारे सिद्धांत नियम फाउंडेशन होते हैं, नींव होते हैं, हमारे धार्मिक रीति विधियां नियम और सिद्धांत कुछ और होते हैं, लेकिन क्या हमारी फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह है? मेरे प्रियो, क्यों आज कलीसिया तो बहुत है लेकिन सम्मानता उनकी फाउंडेशन क्राइस्ट नहीं है, उनकी फाउंडेशन क्राइस्ट नहीं है। या शायद कभी किसी ने क्राइस्ट को फाउंडेशन देके डाला, बड़ा कुछ बड़ा हुआ आगे बढ़ा लेकिन बाद में कुछ और चीजों ने आके स्थान ले लिया। निरंतर कलीसिया की प्रभुता के करने वाला मसीह है और वो होना है, चाहे कितने साल पुरानी हो जाए लेकिन प्रभुता करने वाला मसीह होना है, मसीह के वचन का आधार होना है। और यहां पर वो कह रहा है, तब वो कहता है ना, क्या लिए 21 पद में, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर, शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक साथ मिलकर प्रभु का एक पवित्र मंदिर बन जाते हैं। जब एक साथ मिलकर ईंटों पे ईंटें रखा जाता है तो ईंटों पे ईंटें कैसे रखा जाता है? मसाला रखा जाता है। वो मसाला, मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर ने प्रेम का मसाला दिया है, परमेश्वर ने पवित्रता का मसाला दिया है, परमेश्वर ने धार्मिकता का मसाला दिया है, और उसको हम बना के ईंटों को जोड़ते हैं और उन ईंटों से फिर भवन बनता चला जाता है। मेरे प्रियो, बिना प्रेम के, बिना सच्चाई के, बिना पवित्रता के ईंट जुड़ नहीं सकती। और जो परमेश्वर का घर बनना है वो ये कह रहा है, इसीलिए कह रहा है पवित्र मंदिर बनती जाती है, प्रभु का एक, हजारों नहीं। So, जब हम कलीसिया के भवन की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन दीवारों को जोड़ने के लिए सीमेंट और अलग मसालों की जरूरत पड़ती है, हम परमेश्वर के, इसीलिए पौलुस इफिसियों में आगे चल के प्रेम की बात भी करता है चौथे अध्याय में, उस कलीसिया का निर्माण सिर मसीह है, उसका सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसके निर्माण के तरीके और मसाला जो मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की धार्मिकता, ये है। और इन चीजों के द्वारा हम ईंटों पे ईंटें जोड़ते हुए निर्माण करते चले जाते हैं। अगर ये नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। कई बार हम भवन मनाते हैं, देखते हैं, अरे क्यों ईंट नहीं जुड़ पाई, क्यों ईंट खिसक गई, शायद सही मसाला रखा नहीं गया था, शायद उस मसाले को सही रीति से मिक्स नहीं किया गया था, शायद उसको बनाया नहीं गया था, या उसके जो मात्रा ऊंची वो नहीं था। कई सारी चीजों को हम देखते हैं भाई देशराज, और हमको कई जगह इस बात काम को देखना पड़ता है, और हम लोग आपस में बात करते हैं, अरे यहां ऐसा था, अरे यहां था, अरे यहां था, तो हम दीवालों की बात करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी बात कर रहा, जीवनों की बात कर रहा, और हमें जीवनों का निर्माण करना है। कलीसिया एक जीवनों के बारे में जीवन का निर्माण करने की है, और वो बढ़ती चली आती है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू को जो बहाया है वो मनुष्य के लिए बहाया है, क्योंकि मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया, हाथों को लेकर बनाया, मनुष्य पर उसने अपना श्वास डाला, मनुष्य को बनाने में वो सब कुछ स्वयं खुद इन्वॉल्व था, वो उसका प्रेम था, वो उसकी चिंता थी, वो उसका कंसर्न था, और उसी कंसर्न में उसी चिंता में होकर उसने उसको निर्माण किया है। और मेरे प्रियो, जो आज वो रूप में कलीसिया को देख रहा है, जिसको वो अंत तक अपने साथ ले जाएगा, उस कलीसिया को बनाने के लिए आज भी उसका वही कंसर्न है। मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन के प्रति रुचि रखता है, मेरे और आपके प्रति चिंता रखता है। शायद कई बार मैं जब गलती करता हूं तो शायद मैं नहीं समझने पाता हूं, या मैं इतना स्वयं उदास नहीं होता, लेकिन मेरा प्रभु उदास होता है, मेरा प्रभु उदास होता है। मैं मनुष्य होने के नाते कई बार इग्नोर कर देता हूं, पर मेरा प्रभु कहता है, हे रॉली, मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है, तू मेरे दृष्टि में मूल्यवान है, क्यों तेरा जीवन इस प्रकार से है, क्यों तू इस रास्ते को अपना रहा है, क्यों तू यहां से जा रहा है, क्यों तू कलीसिया मैंने तुझे एक महोल करके बनाया है, क्यों तेरा साथ ऐसा है। वो मेरे से ज्यादा दुखी होता, क्या हम विचार करते हैं। और मेरे प्रियो, कई बार हमारा जीवन हमारे प्रभु को दुख देने वाला हो जाता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी धीरज धरते हुए मसीह मेरे और आपके जीवन में क्रियाशील होते हुए निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। निर्माण का कई बार उस ईंटों को लगाने के लिए आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं चित्रण पर विचार करना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, जो बाइबल में चित्रण उस पर बैठिए, विचार करिए, जब एक मिस्त्री रद्दा रखता तो कैसे रद्दा रखता है, ईंटा उठाता है और ईंटों को अपने बसूली से तोड़ता है ना। मैं तो जब मिस्त्री लोग काम करते हैं, अगर वो तोड़ते हैं ईंटों को, तो मैं बोलता हूं, भैया तुम एक ईंटों को तोड़ रहे हो, जितनी बार नए ईंटों को तोड़ते हो फालतू में मेरे तुम तो कलेजे पर हथौड़ा चला रहे हो, वसूली चला रहे हो, क्योंकि उसकी कीमत है। पर अगर वो उसको ना चलाए तो ईंटा फिट नहीं हो सकता। यहां कुछ भाई लोग हमारे बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, वो जानते हैं किस प्रकार से उनको छाटना पड़ता है, किस प्रकार से उनको तोड़ना पड़ता है, किस प्रकार से उनका हर ईंटा कहे नहीं नहीं मुझे मत तोड़ना, मुझे मत तोड़ना, मुझे मत तोड़ना, मैं तो केवल सीधा ही ऐसे रखा जाऊंगा, तो नहीं होने पाएगा। परमेश्वर निर्माण कर रहा है मेरे और आपका, और इसलिए किस रीति से किस समय में क्या चीज उपयोग करता है हमें समझना है। तब आगे चल के क्या कहता है, पवित्र मंदिर बनते जा, तो पहली चीज देव है, दूसरा चीज फेलो सिटीजन है, उसके पास परमेश्वर का कुटुंब है, तीसरी बात मंदिर है, चौथी बात पांचवें अध्याय में आगे चल के कहता है ना, हम बनते चले जा रहे हैं। पांचवें अध्याय में एक और बात वो कहता है, 22 पद से लेकर, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे कि प्रभु में आधीन हो, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपने पति से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक न झुर्री न इनमें समान कुछ हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसी कलीसिया। और ये कलीसिया का जो चित्रण है, यद्यपि पति पत्नी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो दुल्हन के रूप में है। बाइबल में जो एक और नाम आया दुल्हन के रूप में, अभी प्रकाश वाक्य में हम जाएंगे। और ये सच है कि परमेश्वर ने कलीसिया का जो चित्रण ना केवल देह के द्वारा दिया है, ना केवल मंदिर का द्वारा दिया है, ना केवल झुंड के द्वारा दिया है, लेकिन एक दुल्हन के द्वारा दिया है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में क्या कहता है, वो इस बात को समझाते हुए कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11:2, सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 2, दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्ता सह लेते, परंतु वास्तव में तुम सह भी रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं। वो क्या कह रहा है यहां पर, वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी सगाई किससे कराई है, एक दुल्हन की सगाई हो गई है, और किस रीति अब उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन है। और कलीसिया को जब परमेश्वर अपनी दुल्हन कह रहा है, तो यह दुल्हन उस तैयारी में है कि एक दिन वो समय आएगा जबकि उस मेमने का विवाह होगा। और मेमने के विवाह के बारे में कितने सुंदर रीति से प्रकाश वाक्य उसके 21 अध्याय में कहता है, प्रकाश वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 9 पद, फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहां आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और तब अगर 22 अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे किस प्रकार से, बल्कि 21 अध्याय के दूसरे पद में, फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलम के परमेश्वर की ओर से उतरते देखा, ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए सिंगार किए हो। और मैंने सिंहासन में से एक ऊंची आवाज को ये कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उसके मध्य निवास करेगा। और तब आगे चल के देखते हैं किस प्रकार से तैयारी है, एक बहुत बोझ होगा। प्रकाश वाक्य 21 और 22 जो अध्याय हैं, वो मुख्य अध्याय हैं उस अंतिम समय के, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा जो हमारा दुल्हा है, और हम उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है जिसको वो संवार रहा है। इसलिए वो कहता है उसके अंदर कोई दाग ना हो, धुरी के बिना हो, और शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसका पीछे का वर्णन कर रहा है। और ये समय मेरा और आपका अपने दुल्हन से मिलने के लिए तैयारी का है, क्योंकि मैं और आप उसकी दुल्हन है। उसने उस दुल्हन को मुझको और आपको अपने लहू से खरीदा है। उसका पवित्र वचन मेरे और आपको और अधिक पवित्र बनाता है। उसका पवित्र आत्मा जो मेरे और आपको काल करता है, पाप के प्रति निरंतर करता है, और जो पवित्र आत्मा निरंतर मेरे और आपको पवित्र बनाता है, मेरे प्रियो वो ये काम कर रहा है, दुल्हन को तैयार कर रहा है। एक दुल्हन प्रयास करती है कि अपने विवाह से पहले अपने आप को बहुत ही सुंदर से तैयार कर सके। वो टाइम वो होता है उसका जो एक्सट्रीम होता है उसके जीवन में, और हर एक उसके अभिलाषा होती है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रिपरेशन टाइम दिया है, ये मुझे और आपको तैयारी का टाइम दिया है कि मैं और आप अपने आप को उस प्रभु से, उस मसीह से जिससे मेरी और आपकी सगाई हुई है, और जो कुछ समय बाद आएगा और आ करके मुझे और आपको ले जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा भोज होगा, एक विवाह का प्रबंध होगा। ओ मेरे प्रियो, तब वो मौका आएगा कि तब उसके साथ हम अनंत काल तक रहने पाएंगे, और वो हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर ठहरेगा। सो कलीसिया एक दुल्हन है, उस दुल्हन को स्वयं तैयार करना है। मैं और आप अपने आप को तैयारी के लिए क्या करें, प्रश्न है। अगर मैं और आप देह हैं, उसकी देह हैं, तो इस देह को मैं किस प्रकार से अपने आप को संभाल रहा हूं। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में रखता हूं कि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने देह को संभालना है, उसको पवित्र बनाना है, उस देह को एक साथ गट कर एक दूसरे के साथ जुड़ करके और अधिक मजबूत बनना है और मजबूत बनाते चले जाना। ये परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने मुझे अब परदेशी नहीं रखा, अब मैं उस विदेशी नहीं रहा, लेकिन मैं उसके राज में उसके घराने का व्यक्ति हो गया, अब एक कुटुंब बन गया। उस कुटुंब के साथ मुझे कैसे करना है, कुटुंब की कैसी चिंता करनी है, कुटुंब के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। हम शायद रेगुलर नहीं करते, लेकिन कभी ना कभी करते हैं, कभी ना कभी एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, कभी ना कभी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी ना कभी एक दूसरे के मिल सकते हैं व्यस्त होने के बाद भी। लेकिन हमारा कुटुंब जो है, हमें कुटुंब के बारे में सोचना है, ना कि कुटुंब। लेकिन परमेश्वर ने हमें भवन बना रहा है, हम उस भवन में कौन सा रद्दा लगा रहे हैं, उस भवन में हम कौन सा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उस भवन का निर्माण हो रहा है। मेरे प्रिय, जब हम आशा की बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं मसीह हमारा नींव है, आधार है। दीवारें जो खड़ी हो रही है वो प्रेम है, विश्वास, प्रेम, आशा, तीन चीजें हैं। विश्वास से नींव डाली जाती है, वो मसीह के विश्वास के पवित्र आत्मा। प्रेम से दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारें खड़ी होती हैं। आशा हमारी छत है, वो रूफ हमारा आशा है, जो हमें सिक्योर करके रखती है, जो हमें सुरक्षित करके रखती है। और हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है, जिसको एक दिन हम आएंगे, वो आएगा और हम उसके साथ जाएंगे और अनंतकाल तक उसके साथ राज करेंगे। हम किस प्रकार से इस भवन का निर्माण कर रहे हैं, कितना अधिक मैं प्रयत्नशील हूं। हम पिछले दिनों में उन झूठे शिक्षकों के बारे में सुन रहे थे कि कैसे उस झूठे शिक्षक आकर हमारे बीच में गड़बड़ कसते हैं, हमारे विश्वास को पर आक्रमण कसते हैं और हम कई बार भटक जाते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना है, वो कलीसिया जो निरंतर एक पवित्रता में आगे बढ़ते जाने, हम अगर उसकी दुल्हन है तो किस प्रकार से अपने आप को संवार रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को सजा रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये बाहरी सुंदरता तो थोड़े समय की होगी और खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सुंदरता आती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जो सुंदरता आती है, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा जो सुंदरता आती है, वो जो सुंदरता अंदर से परमेश्वर के स्वभाव को, हमारे स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव में, उसके गुणों में परिवर्तित करती चली आती है, वो दुल्हन जिसके मसीह लेने आएगा। ओ मेरे प्रियो, हम कितना अधिक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। शायद हमें अवसर ना मिले, वो कल आ जाए या कल हम चले जाए, हमें नहीं मालूम। आज मैं आपके साथ प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है कल मैं चला जाऊं, नहीं मालूम। लेकिन प्रिपरेशन कैसी है, तैयारी कैसी है, वो आने वाला है यीशु मसीह आना। कलीसिया बहुमूल्य है, उसका दर्शन है, उसका स्वप्न है, उसकी श्वास है। और जब ये परमेश्वर का दर्शन है, मेरे प्रिय, मैं बार बार कहता हूं, काश उसका दर्शन मेरा दर्शन बन जाए, काश उसका स्वप्न मेरा स्वप्न बन जाए। और जब ये मेरे अंदर आ जाएगा, मेरा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हमारी इच्छाएं परिवर्तित हो जाएंगी, हमारी सोच परिवर्तित हो जाएंगी, हमारे कार्य परिवर्तित हो जाएंगे और हम परमेश्वर को महिमा होते देखने पाएंगे। हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम असफल होते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी जिज्ञासा, इच्छा रखते हुए परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर, कलीसिया परमेश्वर की है, मनुष्य को इस्तेमाल करता। पिछली बार भी मैंने कहा, मसीह कलीसिया की स्थापना करने वाला है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी स्थापना करता है उसके वचन की सहायता के द्वारा, लेकिन वो लोगों को इस्तेमाल करता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था उस स्क्रू ड्राइवर का, हम केवल एक टूल्स हैं जो उसके हाथ में है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम समझ सकें। हमने इफिसियों से केवल इन पांच चीजों को देखा है, लेकिन मैंने कहा कि और भी चार पांच और चिन्ह हैं जिनको परमेश्वर अलग अलग रीति से प्रकट करता, परिवार प्रकट करता है। कलीसिया जो परमेश्वर का परिवार है, किस प्रकार से परिवार में हम संचालन क्या है, कैसे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें परिवार के बारे में सोच सकते हैं। मेरी और आपकी प्रभु सहायता करें कि हम कलीसिया को समझ सकें और उस कलीसिया के प्रति ललाहित होते हुए आगे बढ़ सकें। यदि आज भी आपने उस कलीसिया के अर्थ पर ही समझा, काश प्रभु मेरी और आपकी आंख खोले और हम कलीसिया के भेद को समझ सके, है ना। अभी हम भाई लोग एक कॉन्फ्रेंस में थे और मेरे साथ 2-3-4 भाई लोग थे और वहां पर मिशन 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 की बातचीत हो रही थी और बाद में उन्होंने मुझे बोलने के लिए कह दिया। मेरे भाई लोग यहाँ पर बैठे, वो लोग उस समय वहां पर थे, सो मुझे बोलने के लिए कह दिया। मैंने जब से मैं आया हूं मैं मिशन 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 सुन रहा हूं, लेकिन विदाउट चर्च देर इज नो मिशन, नो मिशन। मैंने कहा आपको जब जरूरत पड़ती है आप चर्च में जाते हैं, आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप चर्च में आते हैं, तो जो कुछ मुझे बोलना था बोलना, लेकिन मेरे प्रियो में प्रार्थना करनी चाहिए कि लोग सचमुच में कलीसिया के अर्थ को समझें, कलीसिया के बोझ को समझें। कलीसिया उसने पीड़ा उठाई है उस कलीसिया के लिए, वेदना सही है और आज भी उसकी पीड़ा है मेरे प्रियो, कि वो अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन को सांवरे हुए देखना चाहता है, सुसज्जित देखना चाहता है, बिना झुरी के देखना चाहता है, क्योंकि वो एक दिन आने वाला है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम अपने आप को तैयार